ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जिसलिए हम श्री गीता मंदिर में उपस्थित है, इसलिए हमें भगवद गीता के बारे में कुछ कहना है। वो कारण है जिससे हमें गीता का विषय पर बात बोलना पड़ेगा। नहीं, गीता मंदिर के अंदर, गीता मंदिर के बाहर, सर्वत्र, सदैव, सर्वथा गीता कथा कहना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवद गीता है सर्वोत्तम ज्ञान। मनुष्य जन्म का विशेष उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त होना, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना। तो सब लोग कर्म करते हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु कर्म अकर्मकृत। श्री गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर एक क्षण में हर एक लोग कुछ ना कुछ काम करते। तो हम सब काम करते हैं, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण हमको उपदेश प्रदान करते हैं जिससे हम ज्ञान के अनुसार काम कर सकते। तो किसी भी काम करने के पहले तो वो काम कैसे करना है और किस लिए करना है तो पहले समझना चाहिए। तो जीवन शैली में हमें समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है और हमें कैसे काम करना है जिससे वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। योगा कर्मसु कौशलम, इसको योग बोलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कौशलता से कर्म करना उसको योग बोलते हैं। तो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। चाणक्य श्लोक में, हितोपदेश में, दोनों में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मैथत पशुभ्य नराणम ज्ञानो हितेशम अधिको विशेषम ज्ञानेन हीन पशुभ्य नराणम। इस श्लोक का विकल्प पाठ भी है, धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन हीन पशुभ्य नराणम। वास्तव में दोनों का अर्थ एक ही है, तो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से एक ही विचार होता है कि पशुओं और मनुष्यों भी दोनों खाना खाते हैं, शयन करते हैं, भयभीत होते हैं और इसलिए लड़ाई करते हैं और मैथुन भी करते हैं। तो मनुष्यों भी करते हैं, पशुओं भी करते हैं। मनुष्य जीवन और पशुवत जीवन, पशुओं का जीवन में यही अंतर है कि मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त होना का अवसर है। ये अधिक विशेषता है, ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशेषा। तो वो नर जिसमें उसका जीवन में ज्ञान नहीं है, वो नर पशु है, वास्तव मनुष्य नहीं है। तो सब मनुष्य के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, परंतु विशेषकर आधुनिक युग में, इस कलि युग में, मनुष्य जीवों में सब कुछ जो ज्ञान का नाम में चलते है, वो ज्ञान केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन की वृद्धि करने के लिए होते है। तो इस उपदेश में ज्ञान शब्द का अर्थ नहीं है, तो कैसे हम कुशलता से आहार, निद्रा, भय, मैथुन कर सकते? इसका अर्थ है कैसे हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन का प्रयास से हम मुक्त हो सकते, उस पशुवत जीवन शैली के अतिरिक्त क्या है? इस प्रश्न पूछना वास्तव मनुष्य जीवन का प्रवेश है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में अनुसंधान नहीं करते, तब तक हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बारे में पूछेंगे। तो भगवद गीता है वो ज्ञान जिससे हम सब कुछ समझ सकते, आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति के बारे में। पूर्ण ज्ञान है भगवद गीता में 700 श्लोक में। तो ये भगवान की निपुणता है कि बहुत कम वचनों में पूर्ण ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता में पहली शिक्षा है इस विचार करना, क्या सत है और क्या असत है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत क्या है? सत सत है जिसका अंत नहीं है, वो शाश्वत सनातन है, और असत है जो अस्थाई है। तो इस भौतिक संसार में सब कुछ असत है, सब कुछ जो है उसका अंत होगा। इस भौतिक स्थिति में सृष्टि, स्थिति, प्रलय तीन पर्याय है, परंतु जो सत है, जो सनातन है, उसका आदि और अंत नहीं है। तो हम सत है, हम आत्मा है, आत्मा का आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। अजो नित्यम शाश्वतो यं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का जन्म था, इस शरीर का मृत्यु होगा, परंतु हम जो आत्मा है, हमारा जन्म कभी भी नहीं हुआ और हमारा मृत्यु कभी भी नहीं होगा। तो क्या है कि हम सोचते कि इस शरीर में मैं हूँ और मेरा अंत होगा, वो ही माया है। ज्ञान है सत को समझना और माया है सत को नहीं समझने से सदैव मोहित रहना। तो भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने से हम सब kuch achitara samaj sakte. Utkramantang stitang va pi bhunjanam va gunanvitam vimurha nanu pashyanti. Pashyanti jnana chakshushaha. Bhagavad Gita mein Bhagavan Krishna humko jnana chakshu pradan karte. Chakshu matlab ankhon. Hum sab kuch dekhte ankhon mein se. Hum abhi Gita mandir mein hai, hum Gita mandir ko dekhte hai. To ghar wapas jaake hum sab kuch jo ghar ke andar mein hai dekhenge. To jnana chakshu se hum ek hi cheezon ko dekhenge, parantu gyan mein se hum dekhenge. Abhi hum maya moha se sab kuch ko dekhte. To kaise hum sab kuch dekhte hain? Ajnana chakshu se. Is prakar hum dekhte hain. Hum dekhte hain ki sab kuch jo jagat mein hai wo mera bhog karne ke liye hai. Kya hai? Hum is prakar vichar karke sab kuch dekhte hain. Kya hai anukul mera indriya sukh ke liye? Aur kya hai pratikul mera indriya sukh ke liye? Aur is prakar man ki vritti hai sankalp vikalp. Jo cheezon se hum aasha karte hai ki usse hum indriya sukh milenge, usi sabhi cheezon ko hum grahan karna chahte hai. Wo sankalp vritti hai. Aur wo sabhi, jaise yadi hum ek ice cream dekhte hai, hum sochte hai wo acha hai, mujhe usko khana hai. Phir hum dekhte hai uska dam hai 50 rupiya, aur hum phir sochte hai ki mera jeb mein itna sa paisa nahi hai aur mujhe ghar ke liye sabun khareedna hai, chawal khareedna hai, mera paas kafi paisa nahi hai ice cream khareedne ke liye. To ek taraf se hum ice cream ko khana chahte, dusre taraf se hum vichar karte ki mujhe aur dusre cheezon ko khareedna hai, isliye mujhe ice cream khareedna nahi hai. Pratikul hai. Ek drishtikon se ice cream khareedna acha hota, dusre drishtikon se pratikul hota. To is prakar hum vichar karte, lekin hamara sab vichar hote kya anukul hai mera hit ke liye, mera hit aur mere kutumbon ke hit, or mera Telangana ka hit, ya mera desh ka hit, ya meri jati ka hit, mera desh ka hit. Lekin ye sab bhautik vichar ke anusar hote. To Bhagavad Gita ka gyan se hum samaj sakte hai ki hamara vastav hit kya hai, aur sab Atma ka vastav hit kya hai. To pahle samajna chahiye, main kon hoon aur atma kon hai. Hum sab ek sharir mein hai. Isliye hum sab kuch jo us sharir ke sath sambandhit hai, uske sath hum atma parichay karte hai. Jaise wo Jai Telangana Andolan chalte, jinke Telangana me janmata, ve Jai Telangana bolte, Telangana Zindabad. Aur jo dusre Telugu wala hai, Simandra ke log, Telangana ki jai nahi bolte, Telangana ki hai hai bolte. Lekin yehi sab vichar sharir ke anusar hote. तो शायद आपका अगला जन्म तेलंगाना में नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, स्वर्ग में होगा, उसकी बड़ी संभावना नहीं है अगर आप जाए तेलंगाना जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते, अथवा आपका जन्म नरक में हो सकते फिर तेलंगाना में हो सकते लेकिन कुत्ता का रूप में, फिर उस समय आप तेलंगाना जिंदाबाद नहीं कहेंगे, आप रुक 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 ऐसा कहेंगे, और आपका अवसर नहीं होगा भगवत गीता ज्ञान प्राप्त होना। तो अज्ञान से ये सब विचार चलते, सभी तेलंगाना के लोग का परम कल्याण कैसे होगा भगवत गीता प्राप्त होने से, और सब सीमांध्र के लोग का परम कल्याण होगा भगवत गीता प्राप्त होने से। तो अज्ञान से लोग भेद बुद्धि करते हैं, हम इस दल के हैं, वो लोग तो हमारे दुश्मन हैं। तो ये सब अज्ञान है। तो पहला ज्ञान है भगवत गीता में कि शरीर अस्थाई है और आत्मा सनातन है। तो शरीर अस्थाई है सब जानते हैं, जाथस्य हि ध्रुवं मृत्यु, भगवद गीता में श्री कृष्ण है कि निश्चित है कि सब जो जन्म लिया है सबका मृत्यु होगा। तो सब जानते हैं, परंतु हम जानते हैं लेकिन हम ऐसे जीवन बीतते जिससे हम यहां रहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु होगा, तो इसलिए हमें पूछना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन हमें नहीं पूछते। हम पूछते हैं तो आइसक्रीम कहाँ है, कैसे मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है जिससे मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकूंगा। तो ये सब अज्ञान है। आत्मा सनातन है, हमारा सनातन कल्याण कैसे होगा इसके बारे में पूछना चाहिए। तो अर्जुन उस प्रकार पूछने वाला नहीं था, अर्जुन भी माया मोहित था। भगवद गीता का एक नाम है गीतोपनिषद, उपनिषद है वेद में उस भाग जिसमें आत्मज्ञान है। तो भगवद गीता श्रेष्ठ उपनिषद है क्योंकि एक वचन में, एक चर्चा में तो पूरा आत्मज्ञान संकलित है। तो दूसरे उपनिषदों में हम देखते हैं तो कैसे इस प्रकार पूछताछ होते हैं, जैसे कठोपनिषद में नाचिकेत यमराज से पूछा, तो कैसे परम कल्याण होते आत्मज्ञान होते। तो भगवद गीता में अर्जुन पहले आत्मज्ञान के बारे में नहीं पूछा, अर्जुन का विचार था कि लड़ाई करना अच्छा नहीं होगा, और किस लिए लड़ाई नहीं करना है वो सब कारण जो या वो तर्क जो अर्जुन दिए थे वो सब धर्म के अनुसार था, परंतु परम ज्ञान के अनुसार नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन का तिरस्कार किया कि अशोचनन्व शोच स्वांग प्रज्ञा वादांश भाष से कथा सुन अनु Gatasu nanu gatasu na gatasu cha nanu shochanti panditaha. Bhagavan Krishna Arjun ko bole ki aap bahut bari baat bolte ho. Jaise tum gyani ho. Parantu jo vastav pandit hai to tum jaise baat nahi bolte. Ve gatasu na gatasu cha. Jo aane wale jaane wali cheez hai arthat is sharir usliye ve shok nahi karte. तो उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान बताए तो उसके पहले अर्जुन का ज्ञान था कि आत्मा है अर्जुन तो अज्ञानी नहीं था अर्जुन का बालावस्था ऋषियों के बीच में था पंच पांडव उनके बाल्यावस्था तो हिमालय में ऋषियों के साथ रहते थे और कुछ समय हस्तिनापुर में रहते थे और उसके बाद उनको 12 साल वनवास करना था जिस समय वे अधिक समय बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे थे तो अर्जुन तो मूर्ख नहीं थे वे आत्मज्ञानी थे परंतु वो ज्ञान उन्होंने सुन लिया थे परंतु वो ज्ञान उनका हृदय में पक्का नहीं था वो थियोरेटिकल ज्ञान था अर्थात वो केवल सुन लिया था परंतु हृदयंगम नहीं किया साक्षात्कार नहीं किया था वास्तव में अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे वे श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं नारा नारायण ऋषि हैं नारा नारायण ऋषि के अवतार है अर्जुन और कृष्ण कृष्ण है सब अवतार के मूल स्रोत है परंतु ऐसे कहना है नारा नारायण है अर्जुन और कृष्ण परंतु भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से अर्जुन मोहित जैसे हो गए थे जिससे भगवान कृष्ण अवसर मिलते इस भगवद गीता ज्ञान सब मूर्ख लोगों का कल्याण के लिए बताए थे तो आत्मज्ञान यही है कि आत्मा ही है आत्मा सनातन है और सब कुछ इस भौतिक संसार में सब कुछ असनातन अशाश्वत उक्रामंतं स्थितं वा भिभुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढं नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः तो सामान्यतः जो कहते हैं मैं हिंदू हूँ गर्व से कहो हम हिंदू है उनका विश्वास है कि देहांतर प्राप्ति होती है अर्थात मृत्यु के बाद हम दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे परंतु उनके पास ज्ञान नहीं है कैसे देहांतर प्राप्ति होती है तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है कैसे एक आत्मा जो ईश्वरीय एक शरीर धारण करते हैं तो उसको छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं। और कैसे यही सब होते हैं? प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव और संचालन से। जिनके पास ये सब ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति विमूढ़ है, बड़ा मूर्ख है। विमूढ़ नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षु से हम समझ सकते हैं। तो कैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं और कैसे यही सब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, कैसे यही सब बार बार जन्म लेना है बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, यही सब दुखमय स्थिति है। तो जैसे बताया था कि अज्ञान से हम सब प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। ये इंद्र सुख के लिए ही वो सब प्रयास जो है वो सब मूर्खता मूर्खता है, क्योंकि हम आत्मा है। तो ये सब विचार विमर्श चर्चा है श्री भगवत गीता में। सबका परम कल्याण होते भगवत गीता क्या ज्ञान प्राप्त करने से। उसमें कैसे आत्मा का वास्तव कल्याण होगा उसका पूरा संदेश है। और कैसे आत्मा का परम कल्याण होगा, इस गीता मंदिर में श्री राधा कृष्ण विग्रह अर्चित होते हैं। तो सामान्यतः सभी गीता मंदिर में कृष्ण अर्जुन का विग्रह स्थापित होते हैं या केवल भगवान कृष्ण। तो इस गीता मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण श्री विग्रह पूजित होते हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस गीता मंदिर के संस्थापक तो वास्तव गीता के पंडित हैं, क्योंकि भगवत गीता का चरम उपदेश है क्या, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करु मामे वैशसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी मे सर्वधमान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो सर्वधमान परित्यजा श्लोक श्री वैष्णव संप्रदाय में चरम श्लोक बोलते। चरम का मतलब सर्वोत्तम और अंतिम। तो ये गीता में अंतिम श्लोक है, अंतिम उपदेश है। सभी प्रकार के अन्य धर्म त्याग करके श्री कृष्ण कहते हैं केवल मेरे चरणों में शरण लो, मैं तुमको तुम्हारे सब पाप कर्म फल से उद्धार करूंगा, मा सूचा चिंता मत करो। तो इससे और भी उत्तम है वो श्लोक जो उसके पहले है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रयोसी। सदैव मुझको चिंतन करो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त बन जाओ। तो सदैव कृष्ण का चिंतन करना उसका प्रतीक है कंस, लेकिन कंस तो भक्त नहीं था। तो कंस का ज्ञान था कि श्री कृष्ण वो कंस का वध करेंगे, इसलिए भय से और द्वेष से Shatrutva se. Kang sadaiva Krishna ka chintan kirta. Lekin wo to bhakt nahita. Manmana sadaiva mujko chintan karo, Shri Krishna kehte hain. Aur mere bhakt ban jao. Bhakti se Krishna ka chintan karna chahiye. Manmana bhava mat bhakto, ma jaji, meri upasana karo. Mang namaskaro. Bhakti mein Shri Krishna ki upasana karna hai. Shri Krishna ko pranam karna hai. Yadi tum us prakar karoge, Shri Krishna Arjun ko kehte hai. Tum nischit rup se mera paas wapas aayoge. Main vachan deta hoon tumko. To Srila Prabhupada is adhunik yug mein Bhagavad Gita ke shresht pracharak te. Aur vastav mein Shri Krishna ke paschat is kali yug mein sarva shresht Gita pracharak te Srila Prabhupada. Unhone keval Bharat mein nahi puri prithvi mein Bhagavad Gita prachar prasarit kiya te. Srila Prabhupada is manmana bhava mad bhakto shlok mein. Vastav mein ye shlok do ba Gita mein aate hain. Gita mein 18 adhyay hai. Aur navam adhyay ka antim shlok yehi shlok hai. Matlab aadha Gita kehne ke paschat is manmana bhava mad bhakto shlok aate hai. Aur Gita ka ant mein bhi is shlok aate hai. To Gita ka ant mein 18th adhyay 5-7 number shlok mein us tatparya mein us bhavart mein Srila Prabhupada is shlok ka sukshma art humko dete hain. Usme Srila Prabhupada humko upadesh dete hain. Bhagavan Krishna humko upadesh dete hain. Manmana bhava mat bhakto. Sadaiva bhakti se mujhko chintan karo. Aur uske anusar Srila Prabhupada aur bhi upadesh dete hain. Ki wo Krishna jo Arjun ke samne te, us Krishna wo roop ke upar chintan karna chahiye, bhakti karna chahiye. Srila Prabhupada aur bhi bolte hai ki wo Krishna jinke sir par mor ka paksh hai. Shikha Pucha Dhari. Aaj subay hum Vishnu Sahasra naam hai. Krishna ka, Bhagavan Vishnu ka ek naam ke upar charcha ki. Wo ek naam hai Shikhandi. Shikhandi kaun hai? Mahabharat mein wo Shikhandi. Wo Amba jo thi Shikhandi. Agla janma. Ban gaye hai. To Shikhandi Bhagavan Vishnu ka naam hai. Aur us naam ka arth hai jinke sir par mor ka paksha, wo Shri Krishna. To Kurukshetra mein, ran ki bhumi mein, Bhagavan Krishna shikha puchha dhari nahi hai. Arthat mor ke paksha dharan karan wale nahi hai. O vraj bhumi mein, Shri Krishna ki vanshi hai. Shikapuchya dhari hai Shri Krishna. To wo Krishna ka chintan karna, bhakti karna chahiye. Srila Prabhupada ka upadesh. Wo Krishna hai Radha Krishna. Isliye main kehta hoon ki Gita upadesh ka charam विचार है श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, तो सब वैष्णव संप्रदाय में, तो सब भक्त भगवद गीता का उपदेश मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आराध्य भगवान, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है भगवान की आराधना करना चाहिए। तो वो भगवान कौन है? कृष्ण ही भगवान है। भगवद गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु भी उपदेश देते हैं श्री कृष्ण की उपासना करना, आराधना करना। आराध्य भगवान, भगवान आराध्य है, तो वो भगवान कृष्ण ही है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है आराध्य भगवान व्रजेश तनय। श्री कृष्ण और विशेष का श्री कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है विशेष का कृष्ण, वो कृष्ण जो व्रजेश तनय है। व्रजेश कौन है? नंद बाबा। और व्रजेश तनय नंद पुत्र अर्थात व्रज स्थित श्री कृष्ण की उपासना करना चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। और तद धाम वृंदावन, उनका धाम है वृंदावन, श्री कृष्ण के धाम है व्रज धाम, द्वारका धाम। कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण उपदेश प्रवक्ता है, भगवद गीता प्रवक्ता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है विशेष का व्रज भूमि स्थित व्रजेश तनय श्री कृष्ण की उपासना करना। और किस प्रकार उपासना श्रेष्ठ है चैतन्य महाप्रभु का विचार के अनुसार, तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। और जिस प्रकार व्रजवधु अर्थात व्रज गोपियों श्री कृष्ण की उपासना की, वो श्रेष्ठ कृष्ण उपासना है। श्री कृष्ण बोलते हैं मद्याजी मांग नमस्कुरु। और इस उपदेश के अनुसार हजार हजारों कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो व्रजवधु व्रज गोपियां की उपासना तो धूप दीप इत्यादि से नहीं होते, कभी कभी होती है, लेकिन उनकी विशेष उपासना है श्री कृष्ण की। सर्वार्थात्मापनम गुरु, सर्व उनकी पूरे जीवन, उनके पूरे जीवन के उद्देश्य, उनके शरीर सब कुछ प्राणार्थ दियावाच श्रेय आचरण सदा। वे सभी प्रकार से सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण किए थे। तो रम्या खचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, हम भगवद गीता के बारे में बोलते हैं, भगवद गीता में वो सब उपदेश जो संक्षेप में संकलित है, विस्तार रूप में श्रीमद् भागवतम में प्रचारित होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं Srimad Bhagavatam Pramana Mamala. Gita mein karm, gyan, yog aur bhakti ke bare mein charcha hote hai aur vichar hai ki param vichar hai ki bhakti sarvashrestha hai. To isliye Srimad Bhagavat mein karm, gyan aur yog ke bare mein itni si charcha nahi hoti hai. Aram se ki Krishna bhakti shreshth upay hai. Upay aur upaya dono Srimad Bhagavat ka vichar yahi hai. Gita ka antim charam vichar hai, sarvadhaman parityaja mamekam sharanam vraja. To us vichar leke Srimad Bhagavat ka prachar hote. Isliye Srimad Bhagavat sarvashrestha shastra praman hai, jiska aadhar hai Srimad Bhagavat Gita ka upadesh. Srimad Bhagavatam pramanam amalam yad vaishnavanam priyam. Isliye Srimad Bhagavat Shastra visheshkar vaishnavon ki priya hai. Prema pumarto mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu matam idam tatradaro nahparaha. Ye Sri Chaitanya Mahaprabhu ka vichar hai aur hum jo unke anuyayi hai, hum isko sarvashrestha mante, hum adar karte. To Chaitanya Mahaprabhu ki shiksha sankshep mein yehi hai, prema pumartho maha. Krishna prem prapti. Wo sab jeev ka param arth. Hum sab is param arth shabd sune hai. Bhautik arth bhi hai aur param arth bhi hai. Chaitanya Mahaprabhu ka prachar hai ki prem sab ka param arth hai. Aur prem ka, ye prem shabd ka arth nahi hai. वो सब कुछ जो प्रेम का नाम है इस भौतिक संसार में चलते हैं. प्रेम के परम आस्पद है श्री कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण. तो चैतन्य महाप्रभु का एक और भी बहुत प्रसिद्ध प्रचार है, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasceva, 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 Gatiranyata. Krishna Mantra Hoite Hobe Shangsha Mochan, Krishna Nam Hoite Pabe Krishna Charan. Krishna Nam Se Mukti Hoti Hai, Krishna Bhakti Hoti Hai, Krishna Prem Hoti Hai. To Krishna Nam Kirtan Karne Ke Sat, Krishna katha sunne chahiye. Wo sab vichar jo Gita aur Bhagavat mein hai. Hare Krishna. To aap sab Srimad Bhagavat Gita yatharup aap sab paath kijiye. Ye Gita yatharup hai. क्योंकि श्रील प्रभुपाद का संस्करण भगवद गीता का वो यथारूप है, क्योंकि कि कृष्णा भगवान जो गीता के वक्ता है वो गीता का विषय भी है. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः. और वो श्री कृष्णा केवल एक माध्यम नहीं है। भगवान कृष्ण अंतिम गति है। इस तत्व और तथ्य भगवद गीता यथारूप में स्पष्ट कहते हैं। हरे कृष्ण। All right. So, any question? कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवत आर्थानम् अश्वादो रसिकाय सह। शजाताशये स्निग्धे साधु संगो सजाताशये स्निग्धे साधु संगो सतो वृते व्रते सतो बरे सतो बरे। श्रीमद्भागवत अर्थानम अश्वादो रसिकाय सह। श्रीमद्भागवत का अर्थ रसिक भक्तों के साथ। वो श्रीमद्भागवत में वो रस जो है उसका रस रसिक भक्तों की संगति में स्वाद करना चाहिए। ऐसे भक्तों की संगति करने चाहिए जो हमारे से उन्नत है भक्ति मार्ग में और ज्यादा उन्नत है ज्येष्ठ भक्तों। और जो जिनके जिनकी रुचि हमारी जैसी है सो नो क्वेश्चन। ऑलराइट। दूसरा माइक। Okay, say it and I'll repeat it. Mike, Arjun, maine bataya ki Arjun bahut samay rishiyon ki sangati mein rehte the aur
ज्ञान था कि हम शरीर नहीं
आत्मा है। उनके पास वो ज्ञान था कि हम सब आत्मा है
लेकिन साक्षात्कार नहीं था।
साक्षात्कार नहीं था। उसके बाद बोला कि वो ये सब योग माया शक्ति श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से एक अभिनय जैसे था और जो उनका पूर्ण साक्षात्कार था लेकिन हम जैसे माया से मोहित ऐसे श्री कृष्ण को वचन बल दिए थे। तो इस प्रकार वो सब ऐसे बोलता क्योंकि ये उदाहरण है कि सब हिंदू बोलते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं परंतु मतलब उनके पास वो ज्ञान है लेकिन साक्षात्कार नहीं। वो केवल विश्वास है परंतु कि पुनर्जन्म होगा और इस उसके अनुसार मुझे क्या करना है to escape Arame, to look to Naisochte. To wo Hamare Sab Hamare Sabki Stiti, ye. Am Jante Lakin Am Gambirat Vase, ye Sab Vicha Naikata. To? Sakshaka ka mool kya hai? Sadhu sangha se hum sakshaka milte. Jaise aap computer manual par sakte. Lekin kaise computer ko chalu karna wo to wo sab kuch par ke bhi to kaise wo button dabna jisse computer chalo hoga to nahi samajhte. Computer ko dekhne se mohit hote. Kya cheez hai, kaise chalana hai. Aur wo darte hai, yadi wo button ko dabunga to shayad bisfar hoga. To agar ek computer gyani aate hai aur humko dekhate hai to hum vastav mein samajh sakte. Yeah, medical science. Hum medical pustak par sakte lekin o kaise sab kuch practically vastav mein karna hai to isliye ek doctor se medical professor se shiksha lena chahiye jinke paas vastav anubhuti hai. तो इस प्रकार साधु संघ से वो ज्ञान जो भगवत गीता में है हम साधु संघ से साक्षात्कार मिलते हैं. वो ही चाबी है. वास्तव ज्ञान का राज्य में प्रवेश करने के लिए उस चाबी है. वो द्वार खोलने के लिए साधु संघ. दक्षिण भारत में सब श्री वैष्णव मंदिर में एक वैकुंठ द्वार है और वैकुंठ एकादशी पर वो द्वार खुलना है और लोग जो उसमें से जाते हैं वो लोग बोलते हैं वैकुंठ जाते हैं. लेकिन हर रोज वो वैकुंठ द्वार खुला है. वो द्वार क्या है? दो कान. यदि हम दो कान खुलेंगे वैकुंठ की कथा सुनने के लिए तो हमारे लिए वैकुंठ जाना सरल होगा. यदि हम वैकुंठ द्वार में से जाएंगे परंतु हमारी बुद्धि भौतिक विषय पर रहते हैं तो हम वैकुंठ जाकर भी हम तुरंत वापस जाने के लिए चाहेंगे. वैकुंठ में तेलंगाना का आंदोलन नहीं है. मैं वापस जाता हूँ. जननी जन्मभूमि स्वर्गमेव गरीयसी. वैकुंठ में तेलुगु बोलने वाले लोग नहीं है. पिज्जा बर्गर्स चिप्स नहीं मिलते. मैं वापस जाता हूँ. तो वैकुंठ जाने के लिए हमारी बुद्धि हमारी भावना वैकुंठ की भावना उस प्रकार होनी चाहिए. तो इसलिए साधु संघ करना चाहिए. साधु संघ में श्रवण करना चाहिए. उससे साक्षात्कार होगा साधुओं की कृपा से. और क्या विधि है सुनने के लिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन स्थद्वदाशः। नम्र भावना से और उत्साह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साह होना चाहिए, इसलिए परिप्रश्न पूछना चाहिए। और सेवा, वैकुंठ भाव क्या है? सेवा भाव, अप्राकृत सेवा भाव। तो ये तेलंगाना आंदोलन उसका आधार है द्वेष भाव। तो जिनके पास इतनी बड़ी आसक्ति है तेलंगाना के लिए लगते है, तो अगला जन्म में वापस आएंगे तेलंगाना में। जय जय तेलंगाना, मच्छर के रूप में और सीमांध्र के लोग में कटने के लिए वापस आएंगे। Could be dangerous saying this. Hare Krishna.
कोई जन्म होने से पहले मरते हैं, फिर जन्म होने के बाद मरते हैं। जो जन्म लेने के बाद 16 साल उम्र में, 30 साल उम्र में किसी आगे में क्या मरे? क्यों ऐसा हो रहा
है? क्या बोल रहा है? I couldn't understand.
अभी कोई जन्म होने से पहले मरे, कोई जन्म होने के बाद मरते हैं। हाँ, जन्म होने के बाद मरे, कोई 16 साल,
मतलब जैसे अबॉर्शन,
कोई 30 साल मरे, कोई एक्जिट होके मरे, क्यों मरे?
क्यों ऐसा होते हैं? गर्भपात, उसको गर्भपात अबॉर्शन कैसा होते है? वो पेट में वो गर्भ जो है वो उसकी स्नेहलमयी माँ से पूछा, उसकी माता क्यों ऐसा करते हैं? जो बड़े पापी है तो वे ऐसा पेट में प्रवेश करते जिससे वे नहीं निकलते, जिससे पेट में उसका हत्या होती है। जो अबॉर्शन करते हैं बड़े पापी हैं, और जो आत्मा जो गर्भ में था जिसका भ्रूण हत्या होता है, शास्त्र में अबॉर्शन का नाम गर्भपात नहीं है, उसका नाम है भ्रूण हत्या। तो उसी स्थिति में है क्योंकि वो बड़ा पापी था। ये भ्रूण हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। अबॉर्शन कम आयु में मृत्यु होते है, वो भी पूर्व कृत कर्म फल। सामान्यतः जो पापी है तो चिरोजीवी नहीं होते, लंबी आयु नहीं होते। छोटे वाले को आशीर्वाद देना है, नहीं चिरंजीवी हो। कभी कभी ऐसा होते है कि जो बड़ा पुण्यशाली है उसका जीवन आयु कम होते, और जिनके पास और थोड़ा करना था इस संसार में तो करते ही और फिर भगवान के धाम जाते, लेकिन ऐसे कम होते। परंतु लंबी आयु जिसमें कुछ भी धार्मिक विचार कुछ भी भगवत भक्ति नहीं होते हैं, उससे अच्छा है बहुत कम साल रहना जिसमें भक्ति होते हैं। अगर एक शिशु एक बार हरे कृष्ण कहते हैं और शरीर चढ़ते हैं तो उसका जीवन और बहुत धन्य है दूसरे व्यक्ति का जीवन से जिसमें 100 साल जीवन आयु था लेकिन एक बार भी हरे कृष्ण नहीं बोला। क्यों ऐसा होते है? इस प्रकार बहुत प्रश्न हो सकते हैं, तो भगवद गीता से हम समझ सकते हैं। उत्क्रामंथं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। कैसे हम अलग अलग शरीर मिलते प्रकृति के 3 गुण के अनुसार, ज्ञानी जन जानते मूर्ख जन नहीं जानते। पुरुष प्रकृति स्तो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सद सद योनि जन्मसु। पुरुष वो हम आत्मा है लेकिन हम भौतिक प्रकृति में स्थित है और हम अलग अलग स्थिति प्रकृति के 3 गुण के अनुसार मिलते हैं। फिर वो और दूसरे श्लोक है हेतु प्रकृति रुच्यते कार्य कारणम कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये सब भगवद गीता में है कि भौतिक प्रकृति कैसे हम काम करते लोग काम करते हैं, ये सब व्यवस्था भौतिक प्रकृति के अनुसार होती है और कैसे वो आत्मा जो भौतिक प्रकृति में स्थित है कैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वो ही कारण है वो आत्मा। ये सब विचार है भगवद गीता में, बहुत गहरा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान आप दूसरे शास्त्र कोई बाइबल कुरान ऐसे तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो आपके पास ये है भगवद गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद के तेलुगु में क्या बोलते यथाथा भगवद गीता यथाथा, आप तेलुगु में पढ़ते हैं तो आप उस भगवद गीता पढ़ लीजिए और साधु संघ में आप पढ़े। आपका क्या कोई बच्चा या भाई कम आयु में देहांत प्राप्त हुए? नहीं, आप केवल पूछते। हरे कृष्ण।